लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से संत पापा फ्रांसिस ने लाइव प्रसारण के माध्यम से स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La quarta domenica di Pasqua che celebriamo oggi è dedicata a Gesù, buon pastore. Il Vangelo dice: le pecore ascoltano la sua voce.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। पास्का का चौथा रविवार जिसको हम मना रहे हैं, यह यीशु भले चरवाहे को समर्पित है। सुसमाचार बतलाता है कि भेड़ें उनकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। संत पापा ने कहा कि प्रभु नाम लेकर बुलाते हैं क्योंकि वे प्यार करते हैं, किंतु सुसमाचार कहता है कि दूसरी आवाजें भी हैं जिनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। वे अपरिचित आवाजें चोर और डाकों की हैं, जो भेड़ों की बुराई चाहते हैं। संत पापा ने कहा कि ये अलग अलग आवाजें हमारे अंदर गूंजती हैं। उसमें ईश्वर की आवाज हमारे अंतःकरण में साम्या से बोलती है और मोहने की आवाज बुराई के लिए प्रेरित करती है। भले चरवाहे की आवाज और चोर की आवाज को किस तरह से पहचाना जाए? हम बुराई के प्रलोभन से ईश्वर की प्रेरणा को कैसे अलग कर सकते हैं? संत पापा ने कहा कि हमें इन दो आवाजों को परखने सीखना है। वास्तव में वे दो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अर्थात वे हमारे हृदय को विपरीत तरीकों से दस्तक देते हैं। वे अलग भाषा बोलते हैं। जब हम भाषा परखना सीख जाएंगे, तब हम ईश्वर की आवाज एवं बुराई की आवाज को भी परखना सीख जाएंगे। ईश्वर की आवाज कभी दबाव नहीं डालती, वह प्रस्ताव रखती है, जबकि बुराई की आवाज बहकाती, आक्रमण करती और दबाव डालती है। यह काल्पनिक भ्रम फैलाती है, प्रलोभन देती और भावुक करती है। यह सबसे पहले फुसलाती, हमें विश्वास दिलाती कि हम शक्तिशाली हैं, किंतु अंत में अंदर से खाली कर देती है और हम पर दोष लगाती है कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। दूसरी ओर ईश्वर की आवाज हमें बड़े धीरज से सुधारती, हमेशा प्रोत्साहन और सांत्वना देती है, यह हमेशा आशा से भर देती है। ईश्वर की आवाज वह आवाज है जिसका क्षितिज है, जबकि दुश्मन की आवाज हमें दीवार के पास अथवा कोने में ले जाती है। दूसरा अंतर है, दुश्मन की आवाज हमें वर्तमान से भटकाती है और भविष्य के भय अथवा अतीत के दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। दुश्मन वर्तमान को पसंद नहीं करता, वह कड़वाहट और दुख की स्थिति की याद दिलाता है जो हमें आहत करते हैं, जबकि ईश्वर की आवाज वर्तमान के बारे बोलती है। इस समय तुम अच्छा काम कर सकते हो, प्रेम की रचनात्मकता प्रकट कर सकते हो, तुम आत्मग्लानी और पछतावा को छोड़ सकते हो जो हृदय को कायद रखते हैं। यह हमें प्रेरित करता, आगे ले चलता और वर्तमान में बोलता है। दोनों आवाजें हमसे अलग अलग सवाल करते हैं।
Quella che viene di Dio sarà che cosa mi fa bene?
जो सवाल ईश्वर से आता है वह यह है, मेरे लिए क्या अच्छा है? दूसरी ओर प्रलोभन देने वाला जोर देता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। इस तरह बुरी आवाज हमसे अपने आप के बारे सोचने के लिए प्रेरित करता है, या अपनी आवश्यकताओं को तुरंत हासिल करना चाहता है, या बच्चों के समान सब कुछ को और तत्काल प्राप्त करना चाहता है। ईश्वर की आवाज कम कीमत पर आनंद की प्रतिज्ञा नहीं करता, यह हमें निमंत्रण देता है कि हम अपने आप से परे जाकर सच्ची अच्छाई और शांति प्राप्त करें। याद दिलाता है कि बुराई कभी शांति नहीं दे सकती या हमारे सामने उन्माद रखती और बाद में कड़वाहट से भर देती है। यह बुराई का तरीका है। अंततः ईश्वर की आवाज और प्रलोभन देने वाले की आवाज अलग अलग परिस्थितियों में बोलते हैं। दुश्मन अंधकार, झूठ और शिकायत पसंद करता है, जबकि प्रभु सूर्य का प्रकाश, सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता पसंद करते हैं। दुश्मन आपसे कहेंगे, अपने आप को बंद कर लो, तुम्हें कोई नहीं समझता, अपने आप को सुनो, दूसरों पर भरोसा मत करो। इसके विपरीत ईश्वर हमें निमंत्रण देते हैं कि हम खुले रहें, स्पष्ट बोलें और ईश्वर एवं दूसरों पर भरोसा रखें। संत पापा ने कहा,
In questo tempo tanti pensieri e preoccupazioni ci portano a rientrare in noi stessi.
इस समय में कई प्रकार के विचार एवं चिंताएं हमें अपने आप में बंद हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उन आवाजों पर ध्यान दें जो हमारे हृदय तक पहुंचते हैं। उनसे पूछें कि वे कहां से आ रहे हैं। उन्हें पहचानने की कृपा के लिए याचना करें और भले चरवाहे की आवाज का अनुसरण करें जो हमें स्वार्थ की सीमा से बाहर निकालते और हमारी सच्ची स्वतंत्रता की चारागाह पर ले चलते हैं। कुंवारी मरियम, भली सलाह की माता, हमारी आत्म जांच का मार्गदर्शन करें और हमारा साथ दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine,
et lux e perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aeterium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न सूचनाएं जारी करते हुए कहा, आज बुलाहट के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मनाया जाता है। ख्रिस्तियों ने हमेशा और जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर के बुलावे का प्रत्युत्तर दिया है। यह दिन हमें यीशु के उस कथन की याद दिलाता है कि ईश्वर के राज्य में बहुत काम है और हमें पिता से प्रार्थना करना है कि वे अपने खेत में मजदूरों को काम करने भेजें। संत पापा ने कहा कि प्रेरिताएं और समर्पित जीवन के लिए साहस और धीरज की जरूरत है और प्रार्थना के बिना कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। अतः उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया कि हम उनके राज्य में अच्छे मजदूरों की कृपा के लिए प्रभु से याचना करें जो उनसे प्रेम से अपने हृदय एवं हाथ दोनों से काम कर सके। तत्पश्चात संत पापा ने कोविड-19 से पीड़ित लोगों एवं उनकी देखभाल करने वालों और महामारी का दुष्प्रभाव झेल रहे लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया जो इस महामारी के गंभीर संकट काल में विभिन्न प्रयासों द्वारा अपना प्रभावशाली और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक क्षमताओं को पारदर्शिता एवं स्वार्थ रहित रूप में वैक्सीन और चिकित्सा की खोज एवं आवश्यक प्रौद्योगिकों की सार्वभौमिक पहुंच की गारंटी के लिए एकजुट किया जाए जो दुनिया के हर हिस्से में प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद दे सके। इसके बाद संत पापा ने मातृ संगठन की याद की जिसकी स्थापना हिंसा, शोषण एवं उदासीनता के शिकार बच्चों के लिए राष्ट्रीय दिवस को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया है। संत पापा ने इस संगठन के व्यवस्थापकों एवं कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया कि वे विभिन्न शैक्षणिक एजेंसियों के साथ अपने निवारक एवं जागृति लाने के कार्यों को जारी रखें। संत पापा ने संगठन के बच्चों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके लिए सुंदर सैकड़ों मार्गरेट फूल बनाकर भेजा था। तब संत पापा ने मई महीने की पुनः याद दिलाते हुए कहा, हमने अभी अभी मई महीने की शुरुआत की है जो माता मरियम को समर्पित है। जब विश्वासी माता मरियम को समर्पित तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना पसंद करते हैं इस साल स्वास्थ्य कारणों से हम उन स्थानों पर विश्वास एवं भक्ति पूर्वक आध्यात्मिक रूप से जाएं और हमारी चिंताओं, आकांक्षाओं और भविष्य की योजनाओं को माता मरियम के हृदय को समर्पित करें। मैं मानव बंधुत्व के लिए उच्च समिति द्वारा सभी धर्मों के विश्वासों के लिए 14 मई को प्रार्थना, उपवास, दया के कार्यों और कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु ईश्वर से मानव की सहायता की याचना में आध्यात्मिक रूप से भाग लेने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा, याद रखें, 14 मई को सभी विश्वासी एक साथ विभिन्न परम्परा के विश्वासी मिलकर प्रार्थना, उपवास और दया के कार्य करें। और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
सुनो मेरा उपदेश नया,
बोले प्रभु,
करो सभी से प्यार,
बोले प्रभु,
तुम सब मेरे प्यारे मित्र तो हो, सेवक नहीं, सच है मेरी बात, करो यकीन।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने पास्का के चौथे सप्ताह की सोमवार को संत मार्था प्रार्थनालय में पवित्र मिसा का अनुष्ठान किया। पवित्र मिसा शुरू करने से पहले संत पापा ने परिवारों को याद करते हुए कहा, आइए आज परिवारों के लिए प्रार्थना करें। इस समय संगरोध में परिवार घर पर बंद हैं और एक साथ समय बिताने के लिए कई नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपनी कला और रचनात्मकता को सामने ला रहे हैं और दूसरी बात यह भी है कि कभी कभी घरेलू हिंसा भी होती है। आइए हम इस संगरोध में रचनात्मक और धैर्य के साथ परिवारों में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। अपने प्रवचन में संत पापा ने प्रेरित चरित्र से लिए गए पहले पाठ पर टिप्पणी की, जहां संत पेत्रुस को गैर यहूदियों के साथ खाना खाने के लिए यरूशलेम में ख्रिस्तीय समुदाय द्वारा फटकार लगाई गई थी। संत पापा ने कहा कि यह कलीसिया के शुरुआती वर्षों में पाए जाने वाले कई विभाजनों में से एक उदाहरण है। विभाजन की यह भावना हमें धर्मी और पापियों के बीच, हम और उन लोगों के बीच विभाजन की ओर ले जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि ईश्वर के सामने हम सही हैं और कभी कभी इसी भावना में हम दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में उस समय के धार्मिक माहौल में न केवल पेत्रुस बल्कि यीशु की भी पापियों के साथ खाने के लिए आलोचनाएं की गई थीं। संत पापा ने कहा कि इस गलत धार्मिक विचार धारणाओं से जन्मी कलीसिया की एक बीमारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के वैचारिक स्थिति में हमारी प्रतिबद्धता पवित्र आत्मा को सुनना अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। गलत धार्मिक विचार धाराओं से हमारा विभाजन भी हो सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने एक सेवानिवृत्त कार्डिनल का हवाला दिया जो वाटिकन में रहते हैं। उस कार्डिनल ने कहा था कि कलीसिया एक नदी की तरह है, कुछ सदस्य नदी के एक तट की ओर और दूसरे नदी के उस तट के करीब हैं, लेकिन हर कोई एक ही नदी में है। संत पापा ने कहा, कोई भी नदी के बाहर नहीं, पर सब नदी के अंदर हैं। ईश्वर भी यही चाहते हैं। संत पापा ने संत योहान के सुसमाचार में उद्धृत यीशु के शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मेरे पास अन्य भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। संत पापा ने कहा, वास्तविकता यह है कि यीशु के लिए हर कोई महत्वपूर्ण है। यीशु सभी के लिए मर गए। यीशु केवल अच्छे और न्यायी के लिए ही नहीं मरे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमारे जीवन को कठिन बनाते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो उन पर विश्वास नहीं करते। यीशु सभी के लिए मरे। संत पापा ने अपने प्रवचन के अंत में सभी पुरुषों और महिलाओं में एकता हेतु प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया, हमारा एक ही चरवाहा हो। ईश्वर हमें विभाजन के मनोविज्ञान से मुक्त करें। ईश्वर इस महान वास्तविकता को देखने में हमारी मदद करें। हम भी यीशु मसीह में भाई बहन हैं और वे हम सभी के चरवाहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 4 मई को आसनसोल धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सिप्रियन मोनिस का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। 3 दिसंबर 1997 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें आसनसोल धर्म प्रांत का पहला धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। 12 मार्च 1998 को उनका धर्माध्यक्षीय अभिषेक किया गया। धर्माध्यक्ष सिप्रियन मोनिस ने 23 वर्षों तक आसनसोल धर्म प्रांत का नेतृत्व किया है। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को ही बारुईपुर के धर्माध्यक्ष साल्वादोर लोबो का त्याग पत्र भी स्वीकार किया। संत पापा ने उसी धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष श्यामल बोस को बारुईपुर का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। संत पापा फ्रांसिस ने बारुईपुर धर्म प्रांत के प्रेरितिक और प्रशासनिक कार्यों में धर्माध्यक्ष साल्वादोर लोबो की सहायता देने के लिए धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष और चांसलर फादर श्यामल बोस को 17 मई 2019 को सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को मोनसिन्योर हेनरिक मिकिस्लाव को घाना का नया प्रेरितिक राजदूत नियुक्त किया। वे वर्तमान में घाना के प्रेरितिक राजदूतावास में एक पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं। संत पापा ने मोनसिन्योर हेनरिक को लिमोसानो का महाधर्माध्यक्ष भी बनाया। मोनसिन्योर हेनरिक का जन्म 1 जनवरी 1969 को मालोगेशेच पोलैंड में हुआ था। 3 जून 1995 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ और उन्होंने कील्स धर्म प्रांत में अपनी प्रेरिताई कार्य करना शुरू किया। कैनन लू की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1 जुलाई 2001 को परम धर्म पीठ के राजनयिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने बेलारूस, क्रोएशिया, भारत और बोस्निया हर्जेगोविना में परम धर्म पीठ के प्रतिनिधित्व में काम किया। उन्होंने राज्य सचिवालय के 3rd खंड राज्यों के साथ संबंधों के अनुभाग में भी काम किया है। वे पोलिश, इतालवी, फ्रेंच, अंग्रेजी, क्रोएशियाई, रूसी और स्पैनिश भाषाएं बोलते हैं। और रविवार 3 मई 57वां बुलाहट हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन कलीसिया ईश्वर की बुलाहट पर चिंतन करने और अपना जीवन समर्पित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने इटली के करीब 100 से अधिक पुरोहितों को याद किया, जो भले चरवाहे के समान अपने लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कोरोना वायरस मरीजों की सेवा करते 100 से ज्यादा पुरोहितों की मौत हुई है। उनका उदाहरण हमें ईश्वर के लोगों की देखभाल करने हेतु प्रेरित करे। संत पापा फ्रांसिस ने अपने परमाध्यक्षीय काल में कई बार याजकीय और धर्म सामाजिक जीवन के बारे में बातें की। 2013 में गुरुकुल के छात्रों और नवसिखियों से बात करते हुए संत पापा ने कहा कि एक पुरोहित या धर्म संघी बनना मुख्य रूप से हमारा खुद का निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक प्यार भरे बुलावे का जवाब है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।